हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 20। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण कीजिए, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्नस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं दराति स्वपरान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा, पीताम्भरधारा बिम्बफलधरोष्ठा, पुलेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा, कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जानि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति वेदेसाङ्गपत्क्रमोपनिषदि, गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा, पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा, देवायतस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं, ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवदीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकीम्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासदे गौर भक्त विन्दा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद पांचवा अध्याय जिसका शीर्षक है श्री नारद द्वारा वेद व्यास को श्रीमद् भागवतम का उपदेश। आज हम श्लोक नंबर 20 पढ़ रहे हैं जिसमें नारद मुनि वेद व्यास जी को कह रहे हैं, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। नारद जी कहते हैं, इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तच्चि स्वयं वेद भावांस्तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं भगवानि वेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं भगवानि वेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भावांस्तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं भगवानि वेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भावांस्तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं भगवानि वेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भावांस्तथापि ते प्रादेश मात्रं भवतः प्रदर्शितम्। शब्दपाठ, इदं हि विश्वं भगवान् निवेतरो। इदं हि विश्वं, इदमन ये ही मन यह संपूर्ण विश्वं, ये जो पूरा विश्व है भगवान अर्थात भगवान। एव तरो, एव का मतलब प्रायः, वैसा ही। तरो यानी अपर से भिन्न, वो भले भगवान ये पूरा संसार है, वो भगवान की शक्ति है परंतु भगवान से भिन्न है। यतो जगत स्थान निरोध संभव, यत अर्थात जिससे, जगत अर्थात यह संसार, स्थान अवस्थित, निरोध संहार संभव उत्पत्त, यानी ये जो संसार है वो उसी भगवान से अवस्थित है, उसी भगवान द्वारा ये अवस्थित है, स्थान मतलब इसकी पालना हो रही है, निरोध उसी भगवान के द्वारा इसका संहार हो रहा है, संभव और उन्हीं के द्वारा इसकी उत्पत्ति हो रही है। यद्धि स्वयं वेद भवांस तथापि ते, यथि मतलब विषयक, स्वयं अपने आप, वेद जानो, भवान अर्थात आप, तथापि फिर भी, ये सब आप जानते हो, यानी कि ये पूरा संसार भी भगवान की शक्ति है। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभु, ये पूरा संसार जो है वो भगवान की शक्ति है, भगवान उसके अंदर है। भगवान कहते हैं मया ततम इदम सर्वम, संसार में जो कुछ भी है उसके अंदर में हूँ। तो यहाँ पर वेद व्यास जी बता रहे हैं, सूर्य नारद जी बता रहे हैं, इदम ही विश्वम भगवान भगवान ही वेतर हो, कि संसार में पूरे भगवान समाये हुए हैं। और यत्तो जगत स्थान निरोध संभव, ये जगत जो है उसको स्थापित करने वाले भी वही है, उसको पालन करने वाले भी वही है, और उसका संहार करने वाले भी यही है। यदि तद्धि वेदम स्वयं वेद भगवान तथापित, आप तो ये सब कुछ जानते हो फिर भी, तथापि वरा फिर भी, प्रारेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम, प्रारेश मात्रम केवल सारांश मैंने आपको बताया, भवतः तुमको प्रदर्शितम, मैंने आपको केवल सारांश बताया है, लेकिन क्योंकि आप तो ये सब कुछ जानते ही हो इसलिए आपको ये सब लोगों को बताना चाहिए था, क्योंकि भगवान के विषय में बताओ ना, क्योंकि आपने इतना सारा, जैसे हमने पिछले पढ़ा कि वेद व्यास जी ने बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं, वेद लिखे हैं, लेकिन उसमें क्या है, उपस्थिति के विषय में है, संहार के विषय में है, और ये सृजन के विषय में है, और इसके अतिरिक्त भगवान की जो भौतिक अपरा प्रकृति है उसके विषय में है, ये जो भौतिक जो 24 एलिमेंट्स हैं उसके विषय में है, भौतिक प्रकृति के विषय में। तो वास्तव में उसका केंद्र बिंदु क्या है, ये सब क्यों है, ये सारे लोग क्यों हैं, ये जो हवा में इतने सारे लोग तैर रहे हैं वो क्यों तैर रहे हैं, पृथ्वी पर जीव ना उत्पन्न हो रहे हैं और मनुष्य और विभिन्न दूसरी योनियां उत्पन्न हो रही है, उसका कारण क्या है, उसका कारण बिंदु केंद्र बिंदु क्या है, भगवान श्री कृष्ण। तो उसके विषय में आपको बताना है। तो अनुवाद देखते हैं, अनुवाद, भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है तथापि उससे अलग है, उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका हुआ है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करेगा। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर ही प्रस्तुत किया है। यहाँ पर शब्द भगवान है, इदम ही स्वयं भगवान निवेदक, भगवान का मतलब होता है षडैश्वर्य युक्त, जिसके पास संपूर्ण धन, संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण ज्ञान हो। इस ऐश्वर्य से समग्र वीर्य से यशस्य ज्ञान वैराग्यस्य एव षडनाम भग इति कण। तो यहाँ पर भगवान के विषय में बता रहे हैं, इदम ही विश्वम भगवान निवेद, कि ये पूरा विश्व जो है वो स्वरूप है भगवान का, है ना, वो भगवान का स्वरूप होने के साथ साथ उससे भिन्न भी है। और वो किस तरह से है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व, कि भगवान इस संसार में है भी और उससे अलग भी है। तो उसको श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति समझाएंगे, तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। जो वास्तविक भक्त होता है वो भगवान को केवल निराकर नहीं समझता, क्योंकि भगवान केवल निराकार कैसे हो सकते हैं, निराकार तो भगवान का ही प्रदर्शन है, भगवान ही इस संसार, अब संसार में कण कण में भगवान व्याप्त हैं, भगवान समाये हुए हैं, लेकिन वो है कौन, जो समाये हुए हैं उसका क्या कोई अस्तित्व नहीं, बस वो कण कण में समाये हुए वही अस्तित्व है? नहीं, वास्तव में जो संसार के कण कण में समाये हुए भगवान है, जिसका निराकार है, उसका एक साकार स्वरूप भी है। तो भगवान निराकार भी है, केवल निराकार है ऐसा भक्त नहीं कहते। वो भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के पैर नहीं है, भगवान का सुंदर मुख कमल नहीं है, भगवान के नेत्र नहीं है। वो एक भक्त कैसे कह सकता है? तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो वास्तव में भक्त है वो जानते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो निर्गुण और सगुण दोनों ही होते हैं। निराकार विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। अब निराकार जो है वो भी भगवान श्री कृष्ण ही है। क्यों? क्योंकि वो उनकी ही शक्ति है। उदाहरण लेते हैं, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष के अंश यानी अंग स्वरूप हैं। वे भी वृक्ष हैं, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां है न शाखाएं। जैसे अत्यंत सुंदर श्री प्रभुपाद जी ने बताया, देखो एक वृक्ष होता है, वो वृक्ष अपनी उसकी एक इनफरादी हैसियत, उसकी इंडिविजुअलिटी है। अब पत्ते और शाखाएं उसके अंश होने के बावजूद भी अगर हम उनको अलग कर दें तो फिर वो वृक्ष नहीं कहलाएंगे, है ना? वो पत्ते कहलाएंगे, शाखें कहलाएंगे, टहनियां कहलाएंगे, लेकिन जब वो वृक्ष के साथ टच है, वृक्ष में लगी हुई है, तब तक तो वो वृक्ष है, लेकिन यदि वो वृक्ष निकाल दी जाए तो वो अलग हो जाती है, वो फिर वृक्ष नहीं कहलाएंगी। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वे वृक्ष हैं, लेकिन वृक्ष स्वयं तो ना पत्तियां हैं ना शाखा है, वो वास्तव में वृक्ष है, लेकिन बाकी सब जो है वो उसके अंग हैं। वेदों का यह कथन कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं, यह बताता है कि क्योंकि प्रत्येक वस्तु पर ब्रह्म से उद्भूत है, अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, है ना? जैसे वेद क्या कहते हैं कि पूरा संसार सर्वम इदम ब्रह्म, है ना? ये जो कुछ भी है वो ब्रह्म है, निराकार है। तो इसका मतलब ये है क्योंकि वो ब्रह्म जो है वो भगवान से उद्भूत हुआ है, भगवान का अंश है, और इसीलिए उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, वो भी भगवान ही है। उसी प्रकार अंग के रूप में हाथ पांव तथा शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव। कितना सुंदर श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि देखो अभी अगर हम कहें कि आपका शरीर कहाँ है, तो आप टच करोगे अपने सर को, अपने हाथ को, अपने पैर को कि ये मेरा शरीर है। ये शरीर तब तक है जब तक आपके शरीर के साथ उसका लिंक है, है ना? लेकिन अगर शरीर से हाथ और पांव निकाल दिए जाए तो उसको कभी भी शरीर नहीं कहा जाएगा, उसका उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी अगर वो शरीर से अलग कर दिए जाए। श्री प्रभुपाद जी देखो कितना अच्छा बता रहे कि इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर ना तो हाथ है ना पांव, है ना? शरीर तो शरीर है, वो उसकी इकाई है, वास्तविक शरीर है, लेकिन वो उसके अंश है। भगवान तो सच्चिदानंद रूप है, अतः भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिद आनंद स्वरूप प्रतीत होती है। अब क्योंकि भगवान सच्चिद आनंद स्वरूप है, इसलिए उसकी भगवान की जो अंश है वो भी भगवान के जैसे ही दिखते हैं सच्चिद आनंद। इसलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। अब जो भौतिक प्रकृति, अच्छा कुछ लोग क्या बोलते हैं कि अब जीव क्योंकि भगवान की परा प्रकृति है, अपरियम इतस्तम प्रकृति विद्धि में परा जीव भूतम, जीव परा प्रकृति है और ये भौतिक जो प्रकृति है वो क्या है? अपरा प्रकृति है। तो कोई ऐसे कह सकता है कि क्योंकि जीव परा प्रकृति है और ये भौतिक शक्ति अपरा प्रकृति, तो जीव तो हाईएस्ट है ना, फिर वो अपरा प्रकृति के अंदर आकर क्यों अनभस जाता है। जीव तो ऊपर वाली प्रकृति, हाईएस्ट प्रकृति है जिसके अंदर जीव आते हैं, लेकिन वास्तव में तब हम ये भूल जाते हैं कि जो अपरा प्रकृति है वो भी भगवान की है, और भगवान से लिंक रखने वाली हर शक्ति जो है उसके अंदर इक्वल पावर होता है। इस भौतिक प्रकृति के अंदर, चूंकि ये भौतिक प्रकृति जो है वो भगवान की शक्ति है, तो उसके अंदर भी इतना पावर है कि यदि जीव की इच्छा होती, अब जीव भी भगवान की प्रकृति है, और जीव की इच्छा अगर प्रबल होती है तो वो भौतिक प्रकृति के साथ अपना लिंक जोड़ देता है और अपने आप को भौतिक समझने लगता है। तो ये जो कुछ भी है संसार में, तो ये यहाँ पर बता, इदम ही विश्वम भगवान ही वेतर, जो कुछ भी है, चाहे वो भौतिक प्रकृति है, चाहे वो आध्यात्मिक प्रकृति है, चाहे अपरा प्रकृति है, चाहे परा प्रकृति, वो सब क्या है, भगवान ही वेतर, भगवान ही है। भले ही वो भगवान ही है, परंतु भगवान से भिन्न होकर उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो भगवान की है इसीलिए वैल्यूएबल है, और यदि भगवान से उनको पृथक कर दिया जाए, जैसे हाथ पैर अगर शरीर से पृथक हो जाए तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह से अब वीर व्यासी ने क्या किया है कि इन सब प्रकृतियों के विषय में बताया, लेकिन भगवान को उनसे अलग कर दिया। भगवान ही जब उनके अंदर भगवान को केंद्र नहीं दिया, तो फिर ये तो मनुष्य को और भी भ्रम में डाल देंगे। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। अब क्योंकि ये बहिरंगा शक्ति भगवान की है और ये माया भौतिक प्रकृति के बंधन में सारे लोग, सारे जीवों को बांध देती है, वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें आदि कारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। अब क्योंकि ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, शास्त्रों से प्राप्त होगा, क्योंकि हम अपनी प्रत्यक्ष दृष्टि से तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते ना, हम प्रत्यक्ष दृष्टि से कोई चीज नहीं देख सकते, हमारे शरीर के अंदर क्या है उसको नहीं देख सकते, इस दीवार के बाहर क्या है उसको नहीं देख सकते, और अगर सूर्य और इलेक्ट्रिक की सहायता ना हो तो हम अपने दूसरे हाथ को भी नहीं देख सकते। तो क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है, तो इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, और क्योंकि अनुमान भी इंद्रियों के द्वारा ही लगाया जाता है, इसलिए वो परफेक्ट प्रमाण नहीं है। तो फिर ज्ञान कैसे प्राप्त हो, केवल शास्त्रों के द्वारा, और वेद व्यास जी ने यदि शास्त्रों में पूर्ण ज्ञान नहीं दिया तो जीव क्या होगा, सदैव भ्रमित रहेगा, सदैव बद्ध जीव बना रहेगा, प्रकृति के बंधन से छूटने का उसको रास्ता नहीं बताया जब शास्त्र ने। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जीव बहिरंगा शक्ति यानी माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए है, वे इससे ही सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें आदि कारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता, ना ही उन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव, वही हाथ पांव नहीं रह जाते जैसे कि वे शरीर से संयुक्त होने पर थे। इसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से कट कर छिन्न हाथ या पांव की तरह होती है। ऐसे अंग हाथ तथा पांव भले ही लगे लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं रह जाती। श्रीमद् भगवत भक्त श्री वेद व्यास इसे भली भांति जानते हैं। श्री नारद उन्हें यह विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सके। श्रीला प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि वो जीव जो कि भगवान के विषय में जानता नहीं है तो प्रकृति में बंधन में फंस जाएगा, क्योंकि उसे भगवान का ज्ञान नहीं है और उसे ये भी पता नहीं है कि किसी भी वस्तु को यदि भगवान से पृथक कर दिया जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। जैसे कि अगर हमारे हाथ पैर को हमारे शरीर से अलग कर दिया जाए तो फिर वो चिन्ह हाथ और पांव, भले दिखते हाथ और पांव जैसे होंगे लेकिन वो कोई काम नहीं करेंगे। उसी तरह से यदि भगवान से जीव को अलग कर दिया जाता है या भौतिक प्रकृति को या आध्यात्मिक प्रकृति को कृष्ण से यदि भिन्न कर दिया जाए तो उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा कि श्रील नारद जी ने बताया, तद्धि स्वयं वेद भगवान तथा पिते, आप तो ये सब कुछ जानते हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते क्योंकि वेद व्यास जी ये सब कुछ जानते हैं तो नारद जी उन्हें इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते कि ये बताओ ना, लोग को कृष्ण के विषय में बताओ, भगवान श्री कृष्ण से पृथक कोई भी वस्तु इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी वस्तु वैल्यूहीन है, अर्थहीन है और उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई स्वार्थ नहीं, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर वो भगवान के अलग है तो भगवान के विषय में संबंधित करके बताओ। तो श्री प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि सलाह देते हैं जिससे बंधन में फंसे हुए जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सकें। कि आपने क्योंकि वेदों में भगवान को आदि कारण नहीं बताया है ना, कि समस्त वस्तुओं के विषय में तो बता दिया लेकिन ये सारी वस्तुएं ये स्थापित कैसे रह रही है, उसका कारण क्या है, ये प्रलय कैसे हो रही है, सृजन कैसे हो रहा है और यह संपूर्ण सृष्टि किस पर टिकी हुई है, इसके विषय में नहीं बताया। और आप तो जानते हो इसके विषय में, तो आप इसके विषय में बताओगे तो फिर क्या होगा, जीव जो भाव बंधन में फंसा हुआ है ऐसी शिक्षा ग्रहण करेगा तो भगवान को आदि कारण समझेगा तो फिर उसका भाव बंधन छूट जाएगा। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैदिक कथन अनुसार भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है और इस प्रकार उनकी परम शक्तियाँ सदैव पूर्ण तथा उनसे भिन्न होती हैं। भगवान वास्तव में शक्तिमान है, ठीक है। अब शक्तियाँ जो है वो तो उनकी, भगवान की जो शक्तियाँ हैं वो कभी कंप्लीट नहीं होती हैं। शक्तियाँ जो भगवान पूर्ण है, भगवान पूर्ण शक्तिमान है लेकिन अगर शक्ति उससे अलग कर दी जाए तो वो पूर्ण नहीं है उन, लेकिन उनसे अभिन्न है, अभिन्न होती है। मतलब भगवान से उसकी शक्ति, चाहे वो बहिरंगा शक्ति हो चाहे अंतरंगा शक्ति हो, वो भगवान से अलग नहीं होती है लेकिन अगर उसको भगवान से पृथक देखा जाए तो वो पूर्ण नहीं होती है। तो भगवान का चाहे निराकार स्वरूप हो चाहे परमात्मा स्वरूप हो, वो कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि भगवान का ये स्वरूप है ऐसे निकाला जाए, अलग से वो कंप्लीट नहीं हो सकता। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी भौतिक शक्ति जो भगवान की अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति के विषय में बता रहे हैं कि आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियाँ भगवान की अंतरंग तथा बहिरंग शक्तियों का प्राकट्य है। ये दो भगवान की अंतरंग शक्ति और भगवान की बहिरंग शक्ति यानी भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं। अब इनमें से बहिरंग शक्ति अपेक्षतया निष्कृष्ट है, यानी वो लो लेवल की है। जो बहिरंग शक्ति है, भौतिक शक्ति जिसको कहा जाता है, यह जो भौतिक सृष्टि है वो उपेक्षता निकृष्ट है, यानी कि वो नीचे वाली है, लोएस्ट है। और जो अंतरंग शक्ति है वो श्रेष्ठ है यानी परा है। श्रेष्ठ शक्ति परा जीवनी शक्ति है क्योंकि उसके अंदर जीव होते हैं, जीव जो है वो भगवान की पराशक्ति है। अतएव यह पूर्णतया अभिन्न है, ये भगवान से अलग नहीं है लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है। अब जो भगवान की अपरा प्रकृति है वो तो कम्प्लीटली भगवान से अभिन्न है, यानी पूर्णतया अभिन्न है। वो मुकम्मल तौर पर भगवान ही की अंतरंग शक्ति तो भगवान की जैसी ही है, ठीक है। लेकिन बहिरंग शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है, लेकिन वो भी भगवान से अलग नहीं है लेकिन उसके अंदर वो पूर्णता नहीं है, क्योंकि वो जड़ है ना, निष्क्रिय है, इसलिए वो अंशता अभिन्न है, वो पूर्णतः अभिन्न है, अभिन्न मतलब सेम, और ये अंशता भगवान से सेम है। किंतु ये दोनों ही शक्तियाँ ना तो समस्त शक्तियों के जनक भगवान के समान है और ना उनसे बढ़कर है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी मेन बात बता रहे कि भले ही अंतरंग शक्ति हो या बहिरंग शक्ति, वो भले एक तरह से भगवान से अभिन्न है, भगवान के जैसी ही है, भगवान से अलग नहीं है, लेकिन वो कभी भी ना भगवान के समान हो सकती है और ना ही भगवान से बढ़कर होती है। ऐसी शक्तियां सदैव उनकी अधीन होती हैं, जिस प्रकार के विद्युत शक्ति यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो चीजें बनती हैं, बनाते हैं इंजीनियर, तो जो शक्ति वो बनाते हैं, चाहे वो कितनी ही बलशाली क्यों ना हो, सदैव इंजीनियर के वश में रहते। जो भी प्रोडक्ट कोई इंजीनियर बनाता है, तो भले ही वो कितना ही पावरफुल प्रोडक्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी किससे चलता है, इंजीनियर के वश में रहता है। मनुष्य तथा अन्य प्राणी उन्हीं भगवान की अंतरंग शक्तियों से उत्पन्न है, इस प्रकार जीव भी भगवान से अभिन्न है। अब क्योंकि भगवान से अलग कैसे हो सकता है जीव, क्योंकि भगवान की शक्ति है तो भगवान से अभिन्न है, किंतु वह कभी भी ना तो भगवान की तुल्य है और ना ही उनसे श्रेष्ठ है। वो भले भगवान से अलग नहीं है, भगवान की शक्ति है, भगवान की पराशक्ति है, लेकिन फिर भी वो ना तो कभी भगवान बन सकता और ना ही उनसे श्रेष्ठ बन सकता। भगवान तथा सारे जीव व्यष्टि व्यक्ति है। व्यष्टि व्यक्ति मतलब उनकी एक अलग अलग एक उनका अस्तित्व है। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि न तो भगवान की सृष्टियों के समान होती है और न उनसे बढ़कर होती है। अब जीव क्योंकि भगवान की अपरा प्रकृति सॉरी भगवान की परा प्रकृति है, तो उसके अंदर भी ये क्वालिटी है कि वो भी कुछ न कुछ क्रिएट कर सकता है ना, बना सकता है, लेकिन वो जो बनाता है, जीव जो बनाता है, तो वो कभी भी भगवान की बनाई हुई वस्तु के बराबर नहीं हो सकता और ना ही उनसे बढ़कर हो सकता है। आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत सी अच्छी मिसाल से समझाते हैं कि मनुष्य एक छोटा सा खिलौना जैसा सुपुतनिक बनाकर बाह्य आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है। जैसे चांद आसमान में चमकता है ना, तो ऐसा अपना नकली का चांद बनाकर आसमान में ना ऐसे हैंग कर सकता है, लटका सकता है, या किसी एरोप्लेन वगैरह कि भाई मैंने अपना चांद बना। किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वह पृथ्वी या चंद्रमा जैसे लोक बनाकर भगवान की भांति उसे वायु में तैरा सकते हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं कर सकता, भगवान की नकल कर नहीं सकता कोई भी। जिस तरह से भगवान ने इतने सारे ग्रह हैं, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, वो वायु में तैर रहे हैं, वो खुद से भी घूम रहे हैं और वायु एक दूसरे के गिर्द भी घूम रहे हैं, लेकिन कभी एक्सीडेंट नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि वो वायु में तैर कैसे रहे। हम तो कोई छोटा सा भी यहाँ पे बोल फेंकेंगे तो फौरन नीचे आएगा, लेकिन ये वायु में इतना घूम रहे हैं और मतलब कंटिन्यू ऊपर ही होते हैं, तो ये कैसे हो रहा है, ऐसा समझने का प्रयास कर सकता है, वो सोच सकता है। ऐसे बोलो जैसे बोलते हैं भाई ये क्या है, ग्रेविटी फोर्स है या भले जो भी है, लेकिन फिर भी वो खुद से कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा कोई लोक बना के, वो नकली का चांद बना के नहीं तो हैंग कर सकता है, लेकिन पूरा लोक हो जिसके अंदर चांद हो, चंद्रमा लोक हो, इसका एक राजा हो, इस तरह से कुछ नहीं बना सकते जी। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जो अल्पज्ञ लोग अपने आप को भगवान के समान बताते हैं, लेकिन वे कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते हैं और ना ही कभी होंगे। बेवकूफ है जो सोचते हैं कि हम भगवान से मिलकर एक हो जाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आपकी अपनी इनफरादी हैसियत, इंडिविजुअलिटी और भगवान की, वो कभी भी मिल कर एक नहीं हो सकते। जिस तरह से अक्सर शास्त्र में बताते हैं कि एक हरा तोता हरे रंग का है, वो अगर हरे वृक्ष में बैठ जाएगा, इसका मतलब ये थोड़े है कि वो हरे वृक्ष के साथ मिल गया, वो तो अब उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। उसी तरह से जीव भले ही ब्रह्म ज्योति में चला जाए, लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। तो अगर यहाँ प्रश्न प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बाद भगवान के गुणों का एक बहुत ही बड़ा प्रतिशत, यानी 78% प्राप्त कर सकता है, तो भी भगवान से आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना असंभव है। तो अगर जीव सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान के जो गुण है उनमें 70% तो वो प्राप्त कर सकता है, 78%, लेकिन फिर भी वो ना भगवान के बराबर हो सकता है और ना ही भगवान से बढ़कर। केवल रुग्ण दशा में मूर्ख व्यक्ति भगवान से तादात्म्य का दावा करता है और इस तरह वह माया द्वारा गुमराह होता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते रुग्ण अवस्था, ये बहुरोग है। भौतिक प्रकृति के द्वारा हमारी जो बुद्धि है, जो वास्तविक शुद्ध चेतना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसको चुरा लिया गया है और इसके कारण जीव ये सोचता है कि मैं भगवान से मिलकर एक हो जाऊंगा और इस तरह वो माया के द्वारा गुमराह हो रहा है। अतः गुमराह जीव को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेम भक्ति करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब हम जैसे जो गुमराह है लोग, जिनको सही तरह से अभी पता नहीं भक्ति के विषय में, उन्हें क्या करना चाहिए? और आगे श्रील प्रभुपाद जी इन गुमराह व्यक्तियों के वापिस से अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने का एक सुझाव देते। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव गुमराह जीवों को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेम भक्ति करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई जीव फिर से भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है और अपने आप को भगवान का दास समझकर उनकी सेवा के लिए तैयार होता है, तो वो अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करता है। जीवों की उत्पत्ति ही इसलिए हो। श्री भोपाल जी बोलते हैं, वास्तव में आपको जो मनुष्य जीवन मिला है ना, वो इसी कारण के लिए मिला है कि आप वास्तविकता को जानने का प्रयास करो और फिर जो समझ, मतलब जो जैसे गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार, जो आपकी इच्छा के अनुसार भगवान आपको समय समय पर प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे जो गुमराह जीव है उनको भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी है और उनकी प्रेम भक्ति करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि ये क्वालिटीज आ जाती हैं कि हम अपने आप को भगवान का दास समझते हैं, भगवान को वास्तविक अपना स्वामी समझते हैं और उनकी सेवा के लिए यदि तैयार रहते हैं, तो ये सब गुमराहियां, ये सब बंधन खत्म हो जाते हैं। जीवों की उत्पत्ति इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं प्राप्य भजस्वमं, ये अरित्यम असुखम लोकम, ये संसार बहुत ही कम समय के लिए क्षीण हो जाने वाला है और इसके अंदर सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है, तो फिर क्या करो? एमं प्राप्य भजस्वमं, आप मेरा भजन करो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे इस संसार में जीवों की उत्पत्ति इसीलिए हुई है, उनके बिना, इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति का सौहार्द नहीं आ सकता। यदि जीव भगवान की भक्ति नहीं करता, तो भले कितना ही ज्ञानी क्यों न हो जाए, कितना ही योगा अभ्यास कर ले, लेकिन यदि भगवान को केंद्र नहीं बना रहा है, तो इस संसार का सौहार्द होना, इस संसार का भला होना संभव नहीं है। श्री नारद वेद व्यास जी को भागवतम के इस विचार को विस्तार करने का उपदेश देते हैं। श्री भोपाल जी बता रहे कि अब वेद व्यास जी को नारद जी कह रहे हैं कि तुम एक ऐसा शास्त्र लिखो जिसमें केंद्र कृष्ण को बनाओ, कि केंद्र जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, समस्त कार्यों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। इसी विचार को विस्तार देने का उपदेश दिया कि आप तो ये जानते हो ना, फिर तो तुम्हें संक्षिप्त में बताया, लेकिन आप इसको डिटेल से बताओ। और आखिर में श्री भोपाल जी बहुत ही मुख्य बात बताए कि श्रीमद भगवत गीता में भी इसी विचार की व्याख्या हुई है कि भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः समर्पित हो जाओ पूर्ण मानव का यही एकमात्र कार्य। श्री गोपाल जी कह रहे हैं भगवद गीता में भी भगवान ने यही बताया, क्या बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुमने इतने सारे धर्मों के विषय में तो बता दिया वेदों में, लेकिन ये तो बताया नहीं कि इन सब को त्याग कर माम एकम शरणम व्रज, केवल भगवान की शरण में जाना। तो अब तुम्हें इसे बताना है शास्त्र के अनुसार, ऐसा शास्त्र बनाओ, ऐसा श्रीमद् भागवतम लिखो जिसमें आप ये बताओ कि समस्त धर्मों को छोड़कर यदि जीव भगवान की भक्ति को अपनाता है तो उससे जो अपराध भी लगता है तो भगवान स्वयं उसके अपराधों को क्षय कर देते हैं और अपने धाम में उसे स्थान देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम् पङ्गुं लङ्घयति गिरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद्भागवतम् प्रथम स्कन्ध पञ्चमोऽध्याय श्लोक संख्या 20। अत्यंत ही सुंदर श्री नारद जी वेद व्यास जी को उपदेश दे रहे हैं, फिर भगवान की भक्ति की विशेषता को बताया। श्लोक नंबर 17-18-19 में अत्यंत ही सुंदर रीति से बताया कि 17 में बताया त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणां भुञ्जम् हरि, कि अगर वो कोई जीव अपना स्वधर्म त्याग कर देता है किसके लिए, चरणाम भुजम हरे, भगवान के चरण कमलों की भक्ति करने के लिए, तो और उसके बाद भजन न पक्को थपते तत्तो यदि, और अगर उस भजन में भी वो पूरा दृढ़ नहीं हो सकता है और उसका पतन हो जाता है, यत्र कवा भद्रव अभूदमुष्य, कि फिर भी अगर वो पूरा भजन भी नहीं कर रहा है, स्वधर्म को भी त्याग कर दिया, फिर भी उसकी कोई हानि नहीं होती, क्योंकि जिस रास्ते पर उसने कदम रखा है वो संपूर्ण उसकी अमंगलों को खत्म करेगा। और भगवान की भक्ति अगर उसने कम समय के लिए भी की है तो कभी क्षीण नहीं होगी, लेकिन यदि किसी ने मनुष्य का जन्म प्राप्त कर लिया और वो भगवान की भक्ति के अतिरिक्त संसार की समस्त वस्तुओं को, संसार की समस्त अचीवमेंट को, भले भौतिक ज्ञान, भौतिक वैराग्य, भौतिक त्याग, भौतिक शक्ति, भौतिक सुंदरता, शरीर स्वस्थ हो, भले कितना ही भौतिक धन उसको प्राप्त हो जाए, को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्म, अगर उसने भगवान की भक्ति नहीं की तो भले ही वो अपने समस्त कर्तव्यों का पालन करता भी रहे, फिर भी धिक्कार है ऐसे जीवन पर, क्योंकि उसने इस मनुष्य जन्म का सही लाभ प्राप्त नहीं किया। और आगे बताया तस्यैव हेतु प्रियते तको विदो, इसे जो वास्तव में विदु है, वास्तव में बुद्धिमान है, तो फिर वो उस हेतु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, न लभ्यते यद् भ्रमतात् भ्रमतां उपर्यत, कि वो ऐसा हेतु, वो ऐसा लक्ष्य जो उसे न ऊपर के लोकों में मिलता है न नीचे के लोकों में मिलता है, उसको प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्न करता है, तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम, अरे मूर्ख तो ये जानता ही नहीं है कि जिस प्रकार उसको दुख स्वतः किसी मेहनत के बगैर ही प्राप्त हो रहे हैं, उसी तरह से उसके हिस्से के सुख भी उसे प्राप्त हो जाएंगे। कब प्राप्त होंगे, कालेन सर्वत्र गभीर रहम सा, काल के प्रभाव से, जिस तरह से काल क्रम से उसे स्वतः दुख प्राप्त हो रहे हैं तो सुख भी मिलेंगे, तो उन सुख दुखों को दूर करने और सुखों की चेष्टा करने के लिए कोई बेवकूफ ही अपना जीवन को सत्यानाश करेगा, लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान है तो वो उस हेतु को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा जो उसे मनुष्य योनि और इस भौतिक जगत के अतिरिक्त और कहीं भी प्राप्त नहीं हो रहा है। और उसके बाद भगवान नारद मुनि ने श्लोक नंबर 19 में बताया नैवै न वै जनो जातु कथांचना व्रजे, मुकुंद सेवियन यवदंग संस्कृतम कि यदि कोई भगवान का भक्त भक्ति करता है और वो भक्ति में नीचे गिर जाता है और दोबारा से सकाम कर्मों की कर्मियों की तरह कार्य करता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि वो अब सकाम कर्मी की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन स्मरण मुकुंदांग युपद गुहनम पुनः भले ही वो दोबारा से कार्य कर रहा है, वही भौतिक कार्य करता है, फिर भी विहात मिच्छेन रस ग्रहोजन। अब वो भगवान की शरण में आ गया है, भगवान के संरक्षण में आ गया है, भगवान की भक्ति जब उसने एक बार कर दी है, अब भगवान उसे भौतिक वस्तुओं में आनंद प्राप्त करने नहीं देंगे। वो ये न के न प्रकार उसको वापस से भले ही अगर क्योंकि हृदय के अंदर कोई भौतिक इच्छा रह गई तो भगवान उसे सुविधा प्रदान करते हैं वो आसक्ति भी खत्म करने के लिए, और भगवान के ये न कहना प्रकार उसको संरक्षण प्रदान करते हैं और फिर उसको जल्द से जल्द अपने पास लेकर आते हैं। वो बाकी सत्काम कर्मियों की तरह ग्रेजुअली आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसने भक्ति का टेस्ट ले लिया, अब उसे भौतिक वस्तुओं में टेस्ट आएगा नहीं, भले वो जाता है कभी भक्ति को छोड़कर, लेकिन फिर दोबारा से भक्ति के नियमों को पालन करना स्टार्ट करेगा। तो फिर भक्त की महिमा बताने के बाद भगवान की महिमा बता रहे हैं। वेद व्यास जी को नारद मुनि कहते हैं इदम ही विश्वम भगवान निवेतरो, कि अब ये पूरा संसार भगवान ही की शक्ति है, चाहे वो भौतिक शक्ति है चाहे वो आध्यात्मिक शक्ति है, वो भगवान ही है, परंतु भगवान से भिन्न उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यह तो जगत स्थान निरोध संभव, ये जगत की उत्पत्ति, जगत का संहार और ये जो पूरा संसार टिका हुआ है वो किस पर है? भगवान के ऊपर है। तो भगवान के विषय में बताओ ना, भगवान की भक्ति के विषय में बताओ, भगवान के विषय में बताओ, तद्धि स्वयं वेद भगवान तथापिते, है ना? आपको ये सब पता है, आप तो वैसे ही जानते हो, प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम, और मैंने तो तुमको सिर्फ थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया है, केवल सारांश प्रस्तुत किया, लेकिन उसी के विषय में बताओ, क्योंकि वेद जो तुमने लिखे हैं ना वो अब लोगों को गुमराह करेंगे। ऐसे कैसे है? जैसे एक व्यक्ति जो है वो अंधा है, उसके सामने अब भले वेदों के अंदर भगवान के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि अलग अलग करके बाकी भौतिक वस्तुएं देवताओं के विषय में और अलग अलग चीजों के विषय में बताया गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में बताया गया है और इस शरीर के विषय में बताया गया, तो फिर क्या अलग अलग कर दिया इस तरह से। जैसे मैं आपको एक अच्छा सा उदाहरण दूं कि एक कमरा हो एकदम खूब अंधेरा, है ना, एकदम अंधेरा हो और उसके अंदर एक हाथी को खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, बाहर जितने भी जीव जितने भी लोग हैं उन्होंने कभी हाथी को देखा नहीं है, और फिर एक एक करके भेजते हैं कि ठीक है आप अंधेरा है कुछ दिख नहीं रहा है, या फिर समझो कि वो जीव जो आ रहा है जो व्यक्ति आ रहा है वो ही अंधा है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, और फिर उसको क्या बोलते हैं कि अंदर हाथी खड़ा है आप उसको स्पर्श करके आओ फिर बाहर आके बताओ कि वो हाथी कैसा है, मतलब हाथी कैसा होता है आप जाके देखो अंदर और स्पर्श करके बताओ। तो एक अंधा व्यक्ति अंदर जाएगा, ठीक है, वैसे अंधेरा कुछ दिख नहीं रहा है, हाथी को कभी उसने देखा नहीं, तो जाते ही सबसे पहले क्या पकड़ लिया, हाथी के चरण को, उसके पांव को पकड़ लिया, तो उसको जोर जोर से दबा रहा है कैसा है कैसा है, उसको समझ में आ गया और बाहर आके बताया, सबने पूछा कैसा हाथी, तो बोला जैसे एक दरख्त होता है ना, दरख्त की जैसे नीचे वाला ऐसा होता है ना तना, वैसा है हाथी, हाथी सेम दरख्त के जैसा लगता है। उसने बोला अच्छा, दूसरे को भेजा, बोला आप जाके देख के आओ कि हाथी कैसा होता है, तो उसने क्या किया अंदर गया और हाथी के जो कान थे ना ऐसे बड़े बड़े कान होते हैं, उसको ऐसे स्पर्श करके देखा और आके बाहर बताया कि हाँ मैं बताऊँ हाथी कैसा होता है, जैसे वो केले के पत्ते नहीं होते बड़े बड़े केले के पत्ते, सेम ऐसा होता हाथी। तो उसने कहा चलो ठीक है दूसरे को भेजा, बोला आप जाके देखो कि हाथी कैसा होता है। तो फिर वो गया और हाथी का इतना बड़ा पेट है ना, उसके ऊपर ऐसे हाथ रखा, से घुमा रहा है टप टप करके देख रहा। अब बोला बाहर आके बोला कैसा होता हाथी, बोला वो टैंक नहीं होता जिसके अंदर पानी भरते हैं, सेम वैसा है हाथी। और फिर दूसरे को भेजा कहना जाके आप देखो, तो हाथी की सूंड को पकड़ा उसने और आके बोला कि जैसे लड़कियों की कलाई नहीं होती सॉफ्ट सॉफ्ट, जैसे उसका हाथ होता है ऐसा है हाथी। और किसी ने जाके दुम को पकड़ा तो वो बोला कि मुझे तो है ना वो जो नहीं होती है एक लंबा सा कीड़ा होता है, पता नहीं कौन सा नाम होता है उसका, तो बोला मुझे तो ऐसा लगा। तो यानी कि अब हाथी ऐसा नहीं है, ये सारे हाथी के अंग तो हैं, परंतु हाथी तो वास्तव में वो अंग नहीं है ना, हाथी का एक अलग अस्तित्व है। उसी तरह से वेद ने क्या किया है, अलग अलग करके बता दिया है, निराकार ब्रह्म बता दिया, परमात्मा बता दिया, देवता बता, ये सब भौतिक प्रकृति बताई, आध्यात्मिक प्रकृति, लेकिन ये सब भगवान से रिलेटेड है। ये सब इसका केंद्र बिंदु, इसका कारण क्या है, भगवान है, तो उसके विषय में तो नहीं बताया। तो फिर लोग को क्या इसी तरह से गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि लोग के पास बुद्धि है नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान है नहीं, तो भगवान को नहीं समझेंगे और अलग अलग वस्तुओं को भगवान समझ जाएंगे, है ना। अलग अलग जैसे कोई है ना टांग को हाथी समझ रहा है, कोई सूंड को हाथी समझ रहा है, कोई कान को हाथी समझ रहा है, लेकिन क्योंकि उसको पूरा दिखाया नहीं ना भगवान, मैंने पूरा हाथी देखा नहीं तो उसको दिखा नहीं। उसी तरह से वेदव्यास जी ने पूरे भगवान को स्पष्टतया नहीं बताया ना, तो इसलिए उनको भगवान के विषय में सही तरह से समझ में नहीं आएगा। तो फिर इसीलिए नारद जी बोल रहे कि आप भगवान को पूरी तरह से बताओ, भगवान के अंगों के विषय में तो बता दिया, लेकिन अब जैसे अंग होते ना शरीर के अंग, उसी तरह श्री प्रभुपाद जी ने बताया हाथ पैर पांव और ये सब अगर अलग अलग कर दिए जाए तो वो शरीर नहीं कहलाएंगे। उसी तरह से अगर ऐसा हो कि कभी शरीर के सारे अंग स्ट्रोक कर देंगे, भाई हम पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं, पूरा दिन हमें मेहनत करनी पड़ती है, हाथ बोले पांव बोले और मुंह बोले, और जितना भी फायदा होता है, जितना भी जो कुछ भी मिलता है वो सारा कौन खा जाता है, पेट के अंदर चला जाता है, तो फिर हम उसकी सहायता नहीं करेंगे, हम पेट से अलग होकर संतुष्ट होंगे। आज से स्ट्राइक है, पेट को कुछ नहीं खिलाया जाएगा, है ना। तो हाथों ने भी स्ट्राइक कर ली, पैरों ने भी स्ट्राइक कर ली, और ना सारे शरीर के विभिन्न जो अंग है वो कह रहे हैं कि भाई अभी हम पेट की सहायता के लिए कार्य नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि सब ये सारे जो शरीर के दूसरे अंग है ना वो सब निर्जीव हो जाएंगे, वो भी मतलब उनके अंदर से भी पावर खत्म हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, क्योंकि वो जब तक पेट को नहीं खिलाएंगे तब तक किसी को संतुष्टि प्राप्त नहीं हो। उसी तरह से यदि हम भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे, केवल अलग अलग वस्तुओं से ही हम हमारा नाता समझेंगे और उन्हीं के द्वारा प्रसन्न होने का प्रयास करेंगे, तो फिर क्या होगा, जिस तरह से दूसरे अंग पेट को नहीं खिलाते तो वो भी कमजोर हो जाते हैं। उसी तरह से अगर जीव जो है वो भगवान को केंद्र करके दूसरों की सेवा नहीं करता है तो फिर वो भी सब अपने महत्व को खत्म कर देते, उनका कोई महत्व नहीं होता है अगर भगवान से पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता बताते हैं, इस पूरे श्लोक को श्रीमद् भगवत गीता 9.4 में भगवान श्री कृष्ण अत्यंत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं। भगवान कहते हैं माया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि नशाहं तेष्वावस्थितः। ये एक ऐसा श्लोक है भगवद गीता में जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ बताया है, यानी कि अब देखो इसमें क्या बताया, माया ततम इदम सर्वम, ये सारा जगत जो है वो मेरे द्वारा ही मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, यानी कि पूरा ये सारा संसार जो है, इस पूरा जगत जो भगवान की सृष्टि है, इस पूरी सृष्टि में अगर किसी चीज का अस्तित्व है तो वो केवल और केवल इसलिए है क्योंकि कृष्ण अपने एक अंश रूप से इसमें प्रवेश करते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण इस संसार का कि अपने एक अंश से इस संसार में नहीं होते तो फिर इस संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माया ततम इदम सर्वम, ये जो संसार है वो मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। अब इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, ब्रह्म ज्योति है, ये तो एक निराकार ही कर सकता है कि एक कण कण में व्याप्त हो जाए वो। और आगे कहते हैं मस्थानी सर्वभूतानी, कि जितने भी भूत हैं, जितने भी जीव हैं, वो मुझ में है। मस्थानी सर्वभूतानी, यहाँ पर भगवान अपने परमात्मा स्वरूप के विषय में बता रहे हैं कि सारे जीव के अंदर, हृदय के अंदर में बैठा हुआ हूँ। और आगे फिर भी भगवान कहते हैं मस्थानी सर्वभूतानी न चाहम तेष अवस्थित, लेकिन फिर भी मैं उनके अंदर नहीं हूँ। यानी कि भले ही ये जीव मेरे 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 अंदर है, सब जीवों के हृदय के अंदर परमात्मा स्वरूप में मैं स्थित हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनके अंदर नहीं हूँ। यानी कि मेरा एक वास्तविक भगवान का स्वरूप है, मेरा एक अस्तित्व है जो कि इन समस्त जीवों से भिन्न है। भले ही मैं पूरी संसार में हूँ, भले ही संसार की अभिव्यक्ति मेरे द्वारा हुई है, जीव एक कण कण के अंदर में हूँ, हर एक जीव के हृदय के भी अंदर बैठा हूँ, फिर भी भगवान कहते हैं न चाहम तेष्वावस्थित, फिर भी मैं इस संसार के अंदर नहीं हूँ, मेरा एक अपना अस्तित्व है। तो वेद व्यास जी बता रहे हैं कि आपको उसी भगवान के रियल अस्तित्व के विषय में बताना है, और इसको सुनने के बाद ही जीव जो है वो उनसे भगवान से प्रेम करना सीखेगा, क्योंकि भगवान के विषय में जानेगा तभी तो प्रेम करेगा, और जब भगवान से प्रेम करेगा तभी उसके भवबंधन छूटेंगे, क्योंकि फिर वो भगवान की और अपने प्रेम को निर्माण करेगा, तो आसक्ति की भी भगवान के पास उसकी आसक्ति भी जाएगी। और जब आसक्ति भौतिक वस्तुओं से हटकर भगवान के चरण कमलों में लगेगी तभी तो जीव ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा करेगा और अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त करेगा, जो क्या है, कृष्ण प्रेम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। हरे कृष्ण।